الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. پہلے اس کا ترجمہ اور اس کے بعد چند تفسیری فوائد. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. ارشاد ربانی ہوا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والوں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. شان نزول اس کا یہ ہے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان گفتگو فرماتے واعظ و تبلیغ فرماتے اس دوران ایک صحابی جن کو اونچا سننے کی بیماری تھی اور آپ جانتے ہیں کہ جو شخص اونچا سنتا ہے وہ اونچا بولتا بھی ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید سامنے والا بھی اونچا سن رہا. عام طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی آواز خود بخود بلند ہو جاتی، یعنی وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا، کیونکہ وہ خود اونچا سن رہا ہوتا ہے تو اس کو خیال ہوتا ہے کہ میں جس سے گفتگو کر رہا ہوں شاید یہ بھی اونچا سن رہا، تو اس کی آواز بلند ہو جاتی. وہ صحابی رسول بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، دوران گفتگو ان کی آواز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند ہو گئی. ان کا یہ عمل قصدن نہیں تھا، سہون تھا، جان بوجھ کر قصدن اپنی آواز کو سرکار کی آواز سے بلند نہیں کیا، اور صحابی رسول یہ کر بھی نہیں سکتا. सहाबा जितना अदब करते थे, एहतराम करते थे, तो ये तवक्को नहीं की जा सकती कि ये अमल कसदन हो। यकीनन ये अमल सहवन था, एक बीमारी की वजह से था, मजबूरी की वजह से एक काम हो गया, लेकिन खालिक़े कायनात ने मजबूरी के इस अमल को जो कसदन नहीं किया गया, सहवन हो गया, बर्दाश्त नहीं फरमाया, फौरन आयत रब्बानी नाजिल फरमा दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ए ईमान वालों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करो, वला तजहरू लहू बिल कौली कजहर बादिकुम लिबादि, इस तरह जैसे तुम आपस में गुफ्तगू करते हो। अब आप देखते हैं ना, दो दोस्त बैठते हैं आपस में गुफ्तगू करते हैं, कभी आवाज बुलंद होती है, कभी पस्त होती है, कभी एक की आवाज बुलंद, कभी दूसरे की आवाज बुलंद। तो कुरान यही मिसाल दे रहे हैं, ऐसे नहीं समझना जैसे तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, गुफ्तगू करते हो, बातें करते हो। अगर तुमने ऐसा किया, अंतहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशुरून, ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमल बर्बाद हो जाएं और तुम्हें पता भी ना चले। बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब सिखा रहा जा रहा है। अब आप देखिए, कोई बादशाह किसी भी मुल्क का हो, वजीर आजम हो, सरबराह मुमलिकत हो, अपने दरबार के कायदे कवानीन खुद बनाता और अपने वजरा से उन पर अमल कराता। जब इस बादशाह के दरबार में आओ तो फला जगह बैठो, वहां सलाम करो, इस तरह बात करो, इस तरह गुफ्तगू करो, इस तरह उठकर जाओ, सारे कायदे कवानीन। लेकिन ये तमाम कायदे और कवानीन उस वक्त तक रहते हैं जब तक वो बादशाह मौजूद है, और जब वो इस दुनिया से चला गया उसकी हुकूमत खत्म हो गई। अब क्या हुआ, अब नया बादशाह है, अब नया हुक्मरान, उसके नए कायदे, नए कवानीन। ऐसा नहीं है कि नया बादशाह आ जाए तो उसने पुराने बादशाह के कायदे कवानीन को बरकरार रखा, अब जो नया आया उसने नए कायदे कवानीन बना दिए। ये सिलसिला एक चलता है, चल रहा है और चलता रहे। लेकिन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस आसमान के नीचे और इस जमीन के ऊपर एक ऐसा अजीम शान दरबार था, बल्कि अब भी है, कि जिसके कायदे कवानीन उस शहनशाह ने नहीं बनाए, खालिक कायनात ने बनाए। मेरे रसूल की बारगाह में आओ, इस तरह बैठो, इस तरह खड़े हो, इस तरह सलाम करो, इस तरह अपनी आवाजों को पस्त करो, और जहां किसी से कोई अदना सी गुस्ताखी हुई फौरन तंबीह कर दी गई। अगरचे सहाबी रसूल से जो अमल सरजद हुआ जानबूझकर नहीं था, कसदन नहीं था, एक बीमारी की वजह से था, लेकिन खालिक कायनात ये जानता था कि अगर आज तंबीह नहीं की गई तो कल कोई जानबूझकर भी यह अमल कर सकता है और मेरे हबीब की शान में गुस्ताखी कर सकता। आयत रब्बानी नाजिल हो गई, सहाबी ने आना छोड़ दिया। हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि नहीं आए, दूसरे दिन देखा नहीं आए, तो पूछा कि कहाँ हैं। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, सरकार वो ये कहते हैं कि मैं जहन्नुमी हो गया, मेरे सारे अमल बर्बाद हो गए, इसलिए कि कुरान कहता है अंतहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशुरून, तुम्हारे अमल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो मेरी आवाज क्योंकि हुजूर की आवाज से बुलंद हो गई, मेरे अमल बर्बाद हो गए, और जब अमल बर्बाद हो गए तो मैं जहन्नुमी हो गया, इस वजह से उन्होंने आना छोड़ दी। कुर्बान हो जाइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, आपने जब ये सुना फरमाया नहीं, उनसे जो कुछ हुआ वो भूल की वजह से हुआ, वो एक मजबूरी की, एक बीमारी की वजह से हुआ, अब तक जो हुआ वो माफ कर दिया गया, वो जहन्नुमी नहीं बल्कि वो तो जन्नती है, सरकार ने माफ फरमा दिया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कयामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए एक कानून बना दिया कि जब अपने हबीब की बारगाह में जाओ अपनी आवाजों को पस्त कर दो। ادب احترام اختیار کرو. اور قرآن صرف سرکار کی ظاہری حیات مبارکہ تک نہیں، قرآن کے احکامات، قرآن کے قوانین، قرآن نے جو ادب سکھایا، یہ ساری چیزیں. ایسا نہیں ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات میں تھے اس وقت تک کے لیے ہیں، آج تک کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے. اور جو لوگ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جا چکے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے، اور جو نہیں گئے انشاءاللہ آئندہ جائیں گے، تو انہوں نے جب مواجع شریف میں حاضری دی ہوگی تو وہیں پر آج بھی ایک تغرے میں یہ آیت لگی ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. تو اس کا مظاہرہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مواجع شریف میں ایک آدمی ہو یا ہزار آدمی ہو، کیسا ہی مجمع ہو لیکن کوئی آواز نہیں ہو، خاموشی سے. جو سلام پڑھ رہا ہے تو وہ بھی خاموشی سے، جو دعا کر رہا ہے تو وہ بھی خاموشی سے. کیوں؟ اس لیے کہ شہنشاہ کون و مکان سامنے موجود. آواز نکالنے کا حکم نہیں ہے، خاموش رہو، خاموش رہو. جو کچھ دل میں ہے وہ دل ہی دل میں کہہ دو، سرکار جانتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہی ہے. قرآن اٹھا کر دیکھیے، متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے ادب سکھایا. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاں کسی نے بھی کسی مسلمان سے یا کسی کافر سے یا کسی سے بھی کوئی ایسی گستاخی سرزد ہوئی، خالق کائنات نے فوراً آیت ربانی نازل فرما کر تنبیہ فرما. ایسا زبردست قانون. قبیلہ بنو تمیم کے لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو، دوپہر کا وقت ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے. انہوں نے دروازے کے باہر سے پکارنا شروع کر دیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام لے کر پکارنا شروع کر دی. اللہ رب العالمین کو ان کا یہ عمل ناگوار گزرا، میرا حبیب اپنے حجرے میں آرام فرما ہو، تم نے باہر سے چیخنا شروع کر دیا، تم نے باہر سے پکارنا شروع کر دیا. نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے. شہنشاہ کون و مکان کے دربار میں جا رہے ہو، ادب یہ ہے کہ خاموش رہو. فوراً آیت ربانی نازل ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اے محبوب، یہ لوگ جو آپ کو حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. اب یہ کیا کریں؟ ولو انہم صبروا، اگر یہ لوگ صبر کرتے، ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود ان میں تشریف لے آتے، لکان خیر اللہم، تو ان کے لیے بہتر تھا. کیسا ادب سکھایا جا رہا؟ انہوں نے جو عمل کیا ہے، اکثر ہم لا یعقلون، اکثر بے عقل ہیں. مولا بے عقل ہیں تو پھر یہ کیا کرتے؟ حتی تخرج الیہم، محبوب آپ خود بخود تشریف لے آتے، اور جب آپ خود بخود تشریف لے آتے، لکان خیر اللہم، تو ان کے لیے بہتر تھا. لیکن اب ایک سوال پیدا ہوا، چلو قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ باہر سے نہ پکاریں، ٹھیک ہے نا، حجرے کے باہر سے نہیں، خاموش رہیں. تو جب خاموش رہیں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون آیا؟ ایک بات ہے نا، ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی آپ سے ملنے کے لیے جائے اور جا کر گھر کے باہر کھڑا ہو جائے کہ جب حضرت باہر آئیں گے تب ملاقات کروں گا، وہ بیچارہ تو گھنٹوں کھڑا رہے گا، حضرت کو پتہ ہی نہیں. جب تک دستک نہیں دیں گے، جب تک اپنا نام نہیں بتائیں گے، جب تک بیل نہیں کریں گے، پتہ کیسے چلے گا؟ یہی ہے نا. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کسی کے گھر پہ جائیں، سرکار نے فرمایا تین مرتبہ دستک دو، تین مرتبہ، اگر جواب آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس آئے. تو یہاں تین مرتبہ کہیں، یہاں تو دروازہ توڑ کے رکھ دیں کہ ہم اتنی دور سے آئیں، یہ نکل کیوں نہیں رہا. اور اگر بیل لگی تو بجا بجا کے اس کا دماغ خراب کر دیں चाहे वो बेचारा सो रहा हो या किसी भी हाल। तो अब सवाल ये पैदा हुआ, खालिक़े कायनात के बारगाह में अर्ज करें, मौला तू अपने हबीब के दरबार का अदब ये सिखा रहा है कि वहां जाओ तो पुकारो नहीं, अदब से खड़े हो जाओ, पुकारना नहीं है, खामोश। हत्ता तखरुजा इलैहिम महबूब, आप खुद तशरीफ ले आए। तो हम अर्ज करेंगे, मौला जब हम बताएंगे नहीं रसूल को कि हम आपसे मिलने के लिए आए, हम आपसे फैज हासिल करने के लिए आए, तो उनको पता कैसे चलेगा, उनको खबर कैसे होगी। जब हमने अपना यह मुद्दा बारगाह रब्बुल इज्जत में पेश किया, और जब भी पेश करेंगे यही जवाब मिलेगा, नादानों खबर उसे की जाती है जो बेखबर, खबर उसे की जाती है जो बेखबर हो, बताया उसे जाता है जिसे पता ना हो। अरे जो रसूल फर्श पे रहकर अर्श की खबरें दे रहा है, क्या वो नहीं जानता कि कौन आया है? क्या वो नहीं जानता कि कौन आया है? यकीनन उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है, फर्श पे रहकर अर्श की खबरें दे रहे हैं, तुम्हारे दिलों के हाल से वाकिफ हैं और हर चीज से वाकिफ। लिहाजा तुम्हारा अदब ये है कि जब तुम जाओ पुकारो नहीं, आवाज ना दो, हो सकता है कि उनके आराम में खलल पड़ जाए, जब वो खुद तशरीफ ले आए यही तुम्हारे लिए बेहतर। तो आपने देखा खालिक़े कायनात ने बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब सिखाया, उधर आवाज बुलंद हुई तो फौरन टोक दिया, इधर इन्होंने पुकारा तो फौरन रोक दिया। अच्छा अब क्या हुआ, जब आवाज बुलंद हुई और उन्होंने आना छोड़ दिया, और फिर सरकार ने बुलाया और उनको जन्नत की बशारत भी दे दी, उसके बाद सैयदना फारूक आजम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन दोनों की कैफियत ये हुई कि जब हुजूर की बारगाह में हाजिर होते और सरकार उनसे कोई बात करते, कोई कलाम करते, ये अपनी आवाज़ों को पस्त कर देते और इतनी आहिस्ता बोलते, इतने आहिस्ता कि सरकार बार बार पूछते कि बोलो क्या कह रहे हो, ज़रा सा ऊंचा बोलो क्या कह रहे हो, और ये अपनी आवाज़ों को पस्त कर रहे। किस लिए? ऐसा ना हो कि हमारी आवाज बुलंद हो जाए, हमारे आमालों का सरमाया खत्म हो जाए। इस वजह से, अदब की वजह से इन्होंने अपनी आवाजों को पस्त कर दिया। और जब इन सहाबा ने अपनी आवाजों को पस्त किया, खालिके कायनात को उनकी यह अदा भी पसंद आ गई, खालिके कायनात को उनकी ये अदा भी पसंद आ गई, और फौरन आयत रब्बानी नाजिल फरमा दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहु अम्मा नवालु इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, बेशक वो लोग जो अपनी आवाजों को पस्त करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, उलाइकल्लज़ीना अम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लितक्वा, अल्लाह ने उनके दिलों को तकवे के लिए चुन लिया, अल्लाह ने उनके दिलों को तकवे के लिए चुन लिया। हम इबादत करें कि दिल को तकवा हासिल हो जाए, हम नमाजें पढ़ें कि तकवा हासिल हो जाए, हम रोजे रखें कि तकवा हासिल हो जाए। उनका मकाम देखो, उनका मर्तबा देखो, जिनको कुरान कह रहा है उलाइकल्लज़ीना अम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक्वा, अल्लाह ने उनके दिलों को तकवे के लिए चुन लिया, अल्लाह ने उनके दिलों को तकवे के लिए चुन लिया। उनको फौरन बशारत दे दी गई, पता चला कि जो अदब करता है उसे जन्नत की बशारत मिलती, जो अदब करता है जन्नत की बशारत मिलती है, और जो नहीं करता उसे जहन्नम की तरफ ले जाया जाता। तो कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर खालिक कायनात अपने हबीब पाक साहिब लौलाक जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होने के आदाब सिखा रहा, बता रहा। अच्छा सहाबा कैसे अदब करते थे, आइए जरा सी उसकी एक झलक हम देखें। ये जो बाज़ लोग कहते हैं ना, मिसाल के तौर पर आप उम्रे के लिए जाएं या हज के लिए जाएं और बारगाह रिसालत में हाथ बांधकर खड़े हो जाएं, तो वो बदबख्त आके आपके हाथों को ऐसे झटक देंगे, कहते काबा हुना, काबा हुना, यानी काबा उधर है अरे उनसे पूछो काबे का काबा इधर है, काबा तो उधर है लेकिन काबे का काबा इधर है। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमा दिया था, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देख। दुआ करो कहेंगे नहीं काबा होना, काबा उधर है, इधर दुआ नहीं कर सकते, इधर हाथ नहीं बांध सकते। सहाबा का तरीका देखो, कितनी मोहब्बत करते थे और कितना अदब करते थे अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुलह हुदैबिया के मौके पर नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम मौजूद हैं, कुरैश की तरफ से एक आदमी आया सुलह नामे के लिए। सुलह नामा पूरा लिखा गया। काफिरों को असल में ये शक था और ये डर था कि मुसलमान जंग करने के लिए आए, जबकि हुजूर अलैहि सलातो वसलाम अपने सहाबा को सिर्फ उम्रे के लिए लेकर जा रहे। और जब वो लोग आए तो सरकार ने फरमाया, सुनो हमारा इरादा जंग का नहीं, हम सिर्फ उम्रा अदा करेंगे और वापस चले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। हुदैबिया के मकाम पर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पड़ाव डाल लिया, वहीं सहाबा ठहर गए। खैर उसकी एक तफसील है, किस्सा मुख्तसर ये कि जब वो आदमी कुरैश की तरफ से आया, पूरा सुलहनामा लिखा गया, उसकी आदत थी, बल्कि अक्सर अरबों की यह आदत थी, बात करते हुए दाढ़ी पर हाथ लगाते थे, अपनी दाढ़ी पर नहीं दूसरे की, यानी जिससे बात कर रहे हैं ना ऐसे उसकी दाढ़ी पर हाथ लगा रहे। तो जब वो आया बात करने के लिए और सैयदना फारूक आजम वहां मौजूद थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी सारे सहाबा मौजूद, तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के करीब खड़े थे। उसने बात करते हुए अपनी आदत के मुताबिक हाथ बढ़ाया और सरकार की रीशे मुबारक को ऐसे हाथ लगाया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, फारूक आजम ने तलवार का दस्ता उसके हाथ पे मारा, कहा नीचे कर बदबख्त। वो हैरान हो गया, ये क्या हुआ, हैरान होकर देख रहा है कि इसने क्यों ऐसा किया। फिर उसने हाथ बढ़ाया, आपने दूसरी मर्तबा मारा, तब उसको एहसास हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं, तो किसी आम इंसान से बात नहीं कर रहा है, मुसलमानों के नबी से बात कर रहा, सैयदुल अंबिया से बात कर रहा। खुद भी अदब करते थे, दूसरों को भी अदब कराते थे, बल्कि अगर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का इख्तियार होता तो उसकी गर्दन ही उड़ा देते, लेकिन आपने तलवार का दस्ता उसके हाथ पे मारा और उसने फौरन अपने हाथ नीचे कर लिए। इतनी मोहब्बत सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन और इतना अदब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का करते थे। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हजरत अब्दुल रहमान एक दिन बैठकर कहने लगे, अब्बा जान एक जंग में आप मेरी तलवार की जद में थे, यानी जब तक ये मुसलमान नहीं हुए थे। सिद्दीक अकबर तो मुसलमान हो चुके थे, बेटे मुसलमान नहीं हुए, तो जब जंग हुई तो बेटा काफिरों की तरफ से और बाप मुसलमानों की तरफ से, अब लड़ते लड़ते दोनों आमने सामने, इन्होंने क्या कहा जंग के बाद, बल्कि मुसलमान होने के बाद, अब्बा जान एक जंग हुई थी, मैं काफिरों की तरफ से लड़ रहा था, आप मुसलमानों की तरफ से, आप मेरी तलवार की जद में थे, यानी अगर मैं चाहता गर्दन उड़ा दी, लेकिन बाप होने की वजह से मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो बाप है मुसलमान हो गया तो कोई बात नहीं, बाप होने की वजह से छोड़ दिया। अब सुनो आशिक रसूल का जवाब, उन्होंने तो ये कह दिया, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला उन्होंने फरमाया, बेटा तूने तो बाप होने की वजह से छोड़ दिया, लेकिन खुदा की कसम अगर तू मेरी तलवार की जद में होता, मैं कभी भी बेटा होने की वजह से नहीं छोड़ता। मेरे नजदीक ये था कि मेरे सामने आने वाला दुश्मन रसूल है और इसे मारने में इताते रसूल, मैं तेरा सर उड़ा देता, मैं नहीं देखता कि बेटा है या कौन है। इतनी मोहब्बत नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम से और इतना अदब बारगाहे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन ने खुद भी अदब किया और दूसरों को भी अदब कराया। हमने अदब सीखा सहाबा से, हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मुंह मुबारक अपनी टोपी के अंदर सी दिया, और जब जंग के लिए जा रहे हैं तो वही टोपी सर पे रखकर फिर लड़ते। और अकीदा क्या है, इस टोपी की वजह से मुझे इंशाअल्लाह फतह हासिल हुई। इसके अंदर हुजूर का मुंह मुबारक है, और उसी की वजह से हर जंग में खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु फाते बनकर लौटते थे। एक मर्तबा जंग में घोड़े पर सवार हैं, अब जाहिर है जंग होती है तो उसमें उछल कूद होती है, फुर्ती दिखानी पड़ती है, घोड़ा उछल रहा है, सामने वाला है उसको मारने के लिए तेजी फुर्ती दिखानी पड़ रही है। जैसे ही घोड़ा उछला, आपकी टोपी सर से उतर कर जमीन पर गिर गई, और ऐसे मौके पर गिरी कि दुश्मन तलवार लेकर तैयार था। जरा भी ये गफलत करें वो फौरन सर उड़ा दे। अब देखो खालिद बिन वलीद का अदब, जिस टोपी में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुंह मुबारक रखा हुआ था वो टोपी जमीन पर गिरी, खालिद बिन वलीद ने जंग को छोड़ दिया, घोड़े से नीचे उतर गए, टोपी तलाश कर रहे। टोपी तलाश कर रहे हैं, लोग हैरान हैं, इतना बड़ा सुपे सालार, इतना बहादुर जरी इंसान, ये जंग छोड़कर ये नीचे उतर कर ये क्या चीज तलाश कर रहा। बल्कि वो दुश्मन जिससे मुकाबला हो रहा था, जो लड़ रहा था, वो भी हैरान हो गया कि ये क्या हो रहा। जब टोपी मिली उसको चूमा, अपने सर पर ओढ़ ली और फिर घोड़े पर सवार हुआ। उसने हैरान होकर पूछा, खालिद तुमने ये क्या किया, अगर मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर दे इस टोपी में क्या ऐसी खासियत। कहा, सुन, इस टोपी में मेरे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुंह मुबारक है, इसी की वजह से मुझे हर जंग में फतह हासिल होती है, और खुदा की कसम ये मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। इसीलिए जान की परवाह नहीं की, टोपी उठाने के लिए नीचे उतर गए, और जब वो टोपी मिली तो उसे चूमा और अपने सर पे रख ली। ये है सहाबा का अदब और एहतराम। इसी तरह एक शख्स जिसका नाम उर्वा, मुसलमान होने से पहले काफिरों ने भेजा, कहा जाओ जंग होने वाली है, जाकर जरा ये देखो मुसलमानों की जंगी तैयारियां कैसी हैं, कितनी तलवारें हैं, कितने नेजे हैं, कितने भाले हैं, कितने ऊंट हैं, कितने घोड़े हैं, जो जो जंगी सामान है, इफरादी कुव्वत कितनी है, मुसलमानों ने जंग की तैयारी क्या की है। अब वो खामोशी से जासूसी करने के लिए, अब जाहिर है जो जासूसी करता है खामोशी के साथ आता, और दुश्मन एक दूसरे का वो देखने के लिए कि इनकी तैयारी कैसी है, किसी ना किसी जासूस को भेजते, जाओ खामोशी से देख कर आ जाओ। उर्वा अपने घर से चलता है, मदीने तैयबा पहुंचा, और जब पहुंचा तो उस वक्त पहुंचा जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुजू करने के लिए तशरीफ फरमा हुए। चारों तरफ सहाबा, शमा के गिर्द परवानों की तरह, चारों तरफ अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुजू फरमा। उसने हैरान कुन मंजर देखा, एक जगह छुप गया, अब वहां से देख रहा है। उसने क्या देखा, सहाबी ने जो लोटा लिए खड़े थे पानी डाला हुजूर के दस्ते मुबारक पर, सरकार ने अपने मुंह में लेकर कुल्ली की तो सहाबा ने हाथों को फैला दी, किसी ने चादर को फैला दिया, किसी ने रुमान को फैला दिया, किसी ने अपने कुर्ते के दामन को फैला दिया कि वो पानी जमीन पर ना गिरने पाए, हम अपने हाथों और चादर पर ले। बड़े हैरान हुआ कि कैसे दीवाने लोग हैं। फिर उसने देखा हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक में पानी लेकर अपने चेहरे मुबारक पर डाला, चेहरे मुबारक से जो पानी जमीन की तरफ चला, सहाबा ने फिर हाथों को फैला दी, फिर चादर के दामन को अपने कुर्ते के दामन को, अपने रुमान को, जिसके पास जो चीज थी उसने फैला दिया। पानी जमीन पर नहीं गिरने दिया, हाथों पर, चादरों पर, कपड़ों पर ले लिया। देख रहा है कैसे दीवाने लोग, कैसे आशिक अपने रसूल से इतनी मोहब्बत करने वाले कि जो पानी जिसमें मुबारक से चेहरे अनवर से लगकर जमीन की तरफ जा रहा है, ये जमीन पर नहीं गिरने दे। देखता रहा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरा वजू फरमाया और यही कैफियत रही। फिर उसने एक और हैरान कुन मंजर देखा। उसने क्या देखा कि सहाबा कसीर थे पूरी जमात, तो जो करीब थे उन्होंने तो हाथों पर ले लिया, चादर पे ले लिया, रुमान पे ले लिया, कुर्ते के दामन पे ले लिया। जो दूर थे वो क्या करते हैं? उसने एक और हैरान कुन मंजर देखा कि जो दूर थे, जिनको पानी का एक कतरा भी नहीं मिला था, उन सहाबा ने उस सहाबी के हाथ पर अपना हाथ मला जिसके हाथ पर पानी गिरा था, और फिर उस हाथ को अपने जिस्म से मल लिया कि इसके हाथ पे गिरा है, उससे हाथ मलकर अपने जिस्म पर मल लिया। ऐसी मोहब्बत करने वाले पूरी कायनात में। देखता रहा, हैरान हुआ और उसके बाद वापस चला गया। और जब वापस जाता है तो काफिर पूछते हैं, बताओ मुसलमानों की जंगी तैयारी कैसी है, कितने नेजे हैं, कितने भाले हैं, कितनी तलवारें हैं, कितने ऊंट या कितने घोड़े हैं, इफराद कुव्वत कितनी है, हम किस तरह उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माजल्ला ख़त्म कर सकते हैं। उसने कहा, भूल जाओ, भूल जाओ, तुम उनको ख़त्म नहीं कर सकते। कहा, क्यों? कहा, मैं बड़े बड़े शहनशाहों के दरबारों में गया, बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया, और उनके मसाहिबीन को उनका अदब करते हुए देखा, उनका एहतराम करते हुए देखा, उनसे मोहब्बत करते हुए देखा, लेकिन खुदा की कसम जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं ऐसे मैंने कहीं नहीं देखे। ऐसी मोहब्बत करने वाले मैंने कहीं नहीं देखे। उन्होंने कहा, क्या देख लिया? अरे मैंने देखा कि जब उनके नबी वुजू करते हैं, कुल्ली करते हैं, वो अपने हाथों को फैला देते हैं, वो अपने दामन को फैला देते हैं, वो चेहरे पर पानी डालते हैं, वो अपने हाथों पर ले लेते हैं। गौर करो, जो लोग अपने नबी के वुजू का पानी जमीन पर नहीं गिरने देते वो खून क्या गिरने देंगे? जो वुजू का पानी नहीं गिरने देते वो खून क्या गिरने देंगे? ऐसी मोहब्बत करने वाले कहीं नहीं। खुदा की कसम, ऐसी मोहब्बत करने वाले पूरी कायनात में नहीं। ना ऐसा दूसरा आका कोई हुआ, ना ऐसे सहाबा किसी के हुए। किसी नबी के ऐसे सहाबा नहीं। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम से कहा, लड़ो। एक कौम थी जिनको कहते थे जब्बारीन, कुरान में उसका जिक्र है। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया, इनसे लड़ो। तो उन्होंने क्या कहा? हम नहीं लड़ सकते। उस कौम के, उनके कद लंबे थे, जिस्म फरबा थे, बहुत ताकतवर थे। अब इन्होंने जैसे ही देखा, इनकी तो रूफना हो, इनसे कौन लड़ेगा? इतने लंबे चौड़े इंसान, इतने ताकतवर, और हम इनके मुकाबले में कमजोर, हम कैसे लड़ेंगे? इन्होंने कहा, नहीं, हम तो नहीं लड़ सकते। हजरत मूसा अलैहि सलाम हुक्म दे रहे हैं, लड़ो। और ये क्या कहते हैं? फज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला। ऐ मूसा, आप और आपका रब जाकर लड़े। इन्ना हाहुना क़ाइदून, हम तो यहां बैठे। कैसी बात है? नबी कह रहे हैं लड़ो, और उम्मती क्या कह रहे हैं? नहीं, आप और आपका रब जाके लड़े, हम तो यहां बैठे। फज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला, इन्ना हाहुना क़ाइदून। और इधर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने जानिसार सहाबा को हुक्म दिया, लड़ो, तो सहाबा ने क्या कहा? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मूसा अलैहि सलाम की कौम नहीं हैं जो हम ये कह दें कि आप और आपका रब जाकर लड़े, हम यहां बैठे हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, जहां पसीना गिरेगा अपना खून बहा देंगे, जहां पसीना गिरेगा खून बहा देंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, अपनी जानों को आप पर कुर्बान कर दें। जहां पर पसीना गिरेगा अपना खून बहा देंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। न सिर्फ ये कि ये कहा, अमली मुजाहिरा करके दिखा दे, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के खातिर, दीन इस्लाम के खातिर, इस्लाम की सरबुलंदी के खातिर, और गुस्ताखान रसूल को वासिले जहन्नम कर दिया। किसी सहाबी ने बर्दाश्त नहीं किया कि कोई अदना सी गुस्ताखी मेरे आका की शान में कर दे और वो जमीन पर चलता हुआ नजर आए, उसको वासिले जहन्नम कर दे। सबसे पहली गुस्ताखी अबू लहब ने की, सबसे पहले। इसका चेहरा जो था बड़ा सुर्ख और सफेद, इसीलिए इसने अपनी कुन्नियत रखी थी अबू लहब, इसके माना शोलों का बाप, लहब शोलों वाला, शोलों का बाप। नाम इसका कुछ और था, बाद में लिखा अब्दुल उज्जा, और कुन्नियत इसने रखी अबू लहब, यानी चमकता हुआ चेहरा इसका था, सुर्ख और सफेद। अपने ऊपर बड़े इसको गुरूर, तकबुर, नाज, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेहद गुस्ताख, और इसका घर भी सरकार के घर के बिल्कुल मुत्तसिल, यानी पड़ाव जिसे कहते। और हरकतें ये करता था कि कूड़ा उठाकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की काशाने नबुवत के दरवाजे के सामने रख देता था, कांटे रख देता था। इसकी बीवी भी कुछ कम नहीं थी, उम्मे जमील, वो भी ये हरकतें करती थी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बर्दाश्त करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, महबूब अब ऐलानिया तबलीग शुरू कर दी। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे सफा पर खड़े हो गए, आपने सबको पुकारना शुरू किया। कुरैश जमा हो गए, जब जमा हुए तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुनो मैं पहाड़ पे खड़ा हूं, तुम नीचे हो पस्ती में, मैं बुलंदी पर, मैं पहाड़ के दोनों जानिब देख सकता हूं। मैं एक बात तुमसे करता हूं, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि एक लश्कर जर्रार पहाड़ की इस जानिब खड़ा हुआ और अनकरीब तुम पर हमला करेगा और तुम्हें तहस नहस कर देगा, तुम्हारे घरों को तबाह बर्बाद कर देगा, तो क्या तुम मेरी बात मान लोगे? बात का यकीन कर लोगे? जितने भी थे सब ने यक जबान होकर कहा, आप सादिक हैं, आप अमीन, कभी झूठ नहीं बोल, बचपन से कभी अमानत में खयानत नहीं, आप सादिक और अमीन। हम आपके कहने से बिन देखे लश्कर को मान लेंगे, हमने नहीं देखा लेकिन आप कह रहे हैं ना, हम मान लेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी बात को दोहराया, जब मेरे कहने से तुम बिन देखे लश्कर को मान रहे हो तो मेरे कहने से बिन देखे खुदा को भी मान लो। मेरे कहने से बिन देखे लश्कर को मान रहे हो, तुमने नहीं देखा, मैंने कहा है कि लश्कर है, तुमने मान लिया, तो मैं ही कहता हूं अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका सच्चा रसूल। तो जब ये बात हुई, सबसे पहले यही बदबख्त अबू लहब सबको हटाकर चीरता हुआ आगे बढ़ा, और इसने शान रिसालत में गुस्ताखी की, सरकार का नाम मुबारक लेकर कहा, तेरे दोनों हाथ टूट जाएं, क्या तूने इसीलिए हमें यहां बुलाया था, तू तबाह हो जाए। और इस किस्म की इसने गलत किस्म की बातें की। जब इसने मजमे में से पुकारा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश, कोई जवाब नहीं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हो गए, लेकिन हुजूर जिसके महबूब थे वो खामोश नहीं रह सकते। सरकार तो खामोश हुए, खालिक कायनात ने उसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज दिया, जिब्रील जाओ इस बदबख्त की गुस्ताखी का जवाब, तब्बत यदा अबी लहब वतब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और ये हलाक हो जाए। अब सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरी सूरत अबू लहब की और इसकी बीवी की मजम्मत में नाजिल फरमा दी और ये बता दिया, मेरे महबूब के हाथ क्यों टूटे, बदबख्त तेरे हाथ टूट जाए, तूने ये कैसे कह दिया कि इनके हाथ टूट जाए। तब्बत यदा अबी लहब वतब, मा अग्ना अनहु मालहु वमा कसब, इसने जो कुछ माल कमाया है ये इसे कोई फायदा नहीं देगा। और इसकी बीवी जो लकड़ियों का गट्ठा अपने सर पर लेकर जाती है वो ही इसके गले में फांसी का फंदा बनेगा और वो हलाक हो जाए। अब जब इसने सूरत सुनी तो और गुस्से में आ गया, तो पहली गुस्ताखी अबू लहब ने की। अब ये इसकी गुस्ताखी फिर मजीद और बढ़ी, तकालीफ देता रहा, कभी कूड़ा डालता है, कभी कांटे बिछाता है, कभी कुछ करता, वक्त गुजरता रहा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी बात का जवाब नहीं दिया, सरकार को जरूरत ही नहीं थी, खालिक़े कायनात खुद जवाब दे रहा, खुद जवाब दे रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम खामोशी इख्तियार की। फिर इसने क्या किया, इसका बेटा उतबा, उसका निकाह हुआ हजरत सैयदा रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा से, हुजूर अलैहिस्सलाम की साहबजादी। इसने बुलाया उसको, तलाक दे दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को। तो उतबा ने क्या किया, न सिर्फ तलाक दी बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी भी की और आपके दामन को पकड़ के खींचा, और मुगल्लिजात जो जो उस बदबख्त के जहन में आई गुस्ताखी शान रिसालत में उसने कर दी। जब यह हुआ अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के कल्ब मुबारक को शदीद सदमा पहुंचा, हुज़्न मलाल हुआ और आपने अपनी जबान मुबारक से फरमाया, ऐ इलाहुल आलमीन अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इस पर मुकर्रर कर दे जो इसको चीर फाड़ के हला कर दे। जबान मुबारक से निकल गया। अच्छा ये बात अबू लहब ने सुन ली। अब दुश्मन था लेकिन जानता था जो बात इनकी जबान से निकलेगी हो जाएगी, जो इनकी जबान से निकलेगी हो जाएगी। बड़ा परेशान हुआ, हिफाजत करने लगा अपने बेटे की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया है, ऐसा ना हो कि कोई इसको चीर फाड़ दे, कोई दरिंदा, कोई ऐसा जानवर। इनकी जबान से निकल गया, उसको पक्का यकीन था। एक मर्तबा तिजारत के लिए गया और ये बेटा उतबा भी उसके साथ। जब रात हुई और सोने का वक्त आया तो अब इसके दिल में तो डर था, बुलाया सबको, कहा देखो तुम लोग मेरी मदद करो। उन्होंने कहा क्या मदद करें, देखो ये मेरा बेटा है और इसने गुस्ताखी की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, और उन्होंने ये अल्फाज अपनी जबान से अदा की, मुझे डर है कि ये होकर रहेगा, दुश्मन है फिर भी मान रहा है, यही मेरे आका की शान, दोस्त तो मानते ही हैं दुश्मन भी मानता, गुस्ताखी कर रहा है फिर भी मानता है, जो जबान से निकलेगा हो जाएगा, लेकिन इस्लाम नहीं लाता क्यों। कुरान ने कहा लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनिन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्माउन बिहा, इनके कान हैं मगर सुन नहीं सकते, इनकी आंखें हैं मगर देख नहीं सकते, इनकी जबानें हैं मगर बोल नहीं सकते, उलाइक कल अनाम बलहुम अदल्लु व उलाइक हुमुल गाफिलून, ये सब चौपाइयों की तरह हैं और ये गफलत में पड़े हुए, गफलत में पड़े हुए, आंखों पर, कानों पर, जबानों पर मोहर लगी हुई, उसी वक्त मान लेता, लेकिन बदबख्ती अजली तौर पर उसका मुकद्दर। तो अब लोगों से कहते मेरी मदद करो, उन्होंने कहा क्या मदद करें, देखो ये मेरा बेटा है, इसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, मुझे डर है कि कोई जानवर, कोई दरिंदा इसे नुकसान ना पहुंचाए, तो तुम इस तरह रात को सो कि इसकी हिफाजत हो। उन्होंने क्या किया, अपने सारे बिस्तर जमा करके एक ऊंचा सा एक चबूतरा बना दिया, एक ऊंची जगह बन गई, सबने बिस्तर का ढेर लगा दिया ना, और उससे कहा उतबा से कि इसके ऊपर सो जाओ। वो लेट गया और ये चारों तरफ लेट गए कि अगर कोई जानवर आया तो पहले हम तक पहुंचेगा फिर इस तक पहुंचेगा, तो हमारी आंख खुल जाएगी तो हम इसको बचा लेंगे, हिफाजत कर लेंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिसको खुदा बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसको जिसकी खुदा की तरफ से जिसकी मौत मुकद्दर हो जाए उसे कोई बचा नहीं सकता। हिफाजत कर रहे हैं उसकी, किसकी, गुस्ताखे रसूल की, गुस्ताखे रसूल की हिफाजत कर रहे हैं। रात हो गई, सो गए, अल्लाह ने उन पर ऐसी गहरी नींद तारी की, एक शेर आया उसने आकर सबके मुंह को सूंघा। जितने लेटे थे ना, थे तो सारे काफिर, अबू लहाब भी वहीं, सबके मुंह को सूंघा। और उसके बाद इसको उतबा के मुंह को सूंघा और उसी वक्त चीर फाड़ करके उसके टुकड़े करके फेंक चला गया। सूंघा क्यों? गुस्ताखे रसूल के मुंह से बू आती, बदबू आती है। वो समझ गया यही मेरे नबी का गुस्ताख है। जानवर भी समझते हैं कि गुस्ताख कौन है, इंसान ही नहीं जानवर भी समझते हैं गुस्ताख कौन है। और ये तो उस वक्त का वाकया है, अभी इसी सदी का वाकया है। एक पादरी बदबख्त, गालिबन इंग्लैंड में या अमेरिका में उसी तरफ का कोई शहर, हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने लगा। चर्च में बैठा, कोई मुसलमान नहीं है, सारे ईसाई बैठे हैं, और ये बदबख्त इसने गुस्ताखी शुरू की। तो आप जानते हैं ना, ये लोग कुत्ते से बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये अंग्रेज जो हैं कुत्ते से बड़ी मोहब्बत करते हैं, यानी बाप से माँ से इतनी नहीं करेंगे जितनी कुत्ते से करेंगे, अपने साथ ही सुलाते, एक ही जैसे हैं ना सारे। तो इसीलिए कुत्ता जो था वो वहां मौजूद था उस चर्च में। एक अंग्रेज आया तो अपने साथ कुत्ता भी ले आया, कुत्ते को साथ साथ लेके फिरते। उसने जैसे ही हुजूर की शान में गुस्ताखी सुनी तो उस पर छलांग लगाई, उस पादरी पर। लोग आगे बढ़े, उन्होंने जल्दी से इसको पकड़ा, उसको बचाया, ये किया। अब ये शर्मिंदा हो गया, तो लोगों ने, किसी ने कहा इसने इस वजह से छलांग लगाई है कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही तकरीर में इशारा कर रहा था, वो कुत्ते की तरफ इशारा हो गया तो वो उछल के मेरे पास आ गया, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, लोगों ने उसको पकड़ लिया। फिर इसने तकरीर शुरू की, और जैसे ही नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में इसने गुस्ताखी की, कुत्ते ने दूर से छलांग लगाई और जाकर उसकी गर्दन को यहां से पकड़ लिया, और उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक वासिले जहन्नुम नहीं करते। हुजूर अलैहिस्सलाम का जिंदा मौजदा इसी सदी में जाहिर हो गया कि जानवर भी समझता है कि कौन मेरे रसूल का गुस्ताख है और कौन वफादार। जानवर भी समझता, कि अभी कई वाक्य है, ये नहीं अबू लहब का उतबा का वाक्य तो पुराना है। उस वक्त से लेकर आज तक जिसने भी, जब भी, जहां भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अदना से भी गुस्ताखी की, अल्लाह तबारक व ताला ने इबरतनाक सजा उसको दी। इसी हाँ जी, इसी दुनिया में, आखिरत में जो कुछ सजा मिलेगी वो तो मिलेगी, इसी दुनिया में सजा। अबू लहब का हाल क्या हुआ? जब इसको ये खबर मिली, जंगे बदर में मुसलमानों को फतह हुई, इसको सख्त रंज हुआ, बड़ा मलाल हुआ, ये कैसे हो गया, हमारे इतने बड़े बड़े सूरमा, इतने बड़े बड़े लीडर, कुरैश के सरदार, ये सब के सब खत्म हो गए, ये सब वासिले जहन्नुम, ये सब चले गए, बड़ा इसको रंज हुआ। और उसी में इसको एक बीमारी पैदा हो गई, जैसे ताऊन की बीमारी होती है, और एक और किस्म की बीमारी जिसमें जिस्म गलता है, उंगलियां गल कर सड़ कर गिर जाती हैं, जिस्म से अलग हो जाता है, जिस्म गलना शुरू हो जाता है, वो बीमारी अबू लहब के शुरू हो गई। जब बीमारी शुरू हुई, जिस्म से बदबू आनी शुरू हुई, और जिस्म से बदबू आनी शुरू हुई तो घर वाले दूर हो गए, इसके करीब नहीं जाओ। किसी ने कहा यह बीमारी तो छूने से लग जाती है, करीब जाने से बीमारी लग जाती है, अपने घर वाले ही दूर हो गए, खाना पीना बंद। उसी कैफियत में इबरतनाक मौत हुई अबू लहब की, वासिले जहन्नम हो गया। और क्योंकि जिस्म से बदबू आ रही थी, कोई उठाने तक नहीं गया, सब दूर है, जिंदगी में ही दूर हो गए थे, मरने के बाद कोई लाश उठाने के लिए तैयार नहीं। तो जो कुछ लोग थे कुरैश के, कुछ और दीगर कबाइल के, उन्होंने उसके बेटों से कहा कि देखो तुम्हारा बाप था, कम से कम उठा के इसको दफा नहीं कर दो, कहा इतनी बदबू है कि जाएं कैसे, करीब कैसे जाएं, फिर क्या करें। चंद हफ्शियों को बुलाया, हफ्शी गुलाम, और उनसे कहा किसी तरह इसको उठाकर एक गड्ढे में डाल दो। उन्होंने क्या किया, एक गहरा गड़ा खोदा और बदबू इतनी के करीब नहीं जा सकते। देखो अल्लाह ने दुनिया ही में इबरतनाक अंजाम कर दिया, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं कि बीमारी हमें लग जाए, कोई करीब जाने को तैयार नहीं। बदबू की वजह से पता चला कि जो गुस्ताखी करता है उसके मुंह से बदबू आती है, उसके जिस्म से बदबू आती है। इसलिए कि खुशबू तो हुजूर की तरफ से है, अरे उन्हीं की शान में गुस्ताखी करोगे तो खुशबू कहां से आएगी। गुस्ताखी शैतान की तरफ से है, वो तो बदबू में ही भरा हुआ, तो बदबू ही मिलेगी, खुशबू कहां से मिलेगी। इबरतनाक मौत हुई अबू लहाब की, और तारीख की किताबों में लिखा है कि उसको उठा भी ना सके, लकड़ियां लेकर उससे, लकड़ियों से जैसे धकेलते हैं ना, इस तरह उसको लुढ़काते हुए लाए और उसको उस गड़े में डाल दिया और ऊपर से पत्थर और मट्टी डालकर उसको बंद कर दिया कि किसी तरह ये बदबू खत्म, वासिले जहन्नम हो। ये इबरतनाक अंजाम हुआ हुजूर अलैहि सलातो वसलाम की शान में गुस्ताखी करने वाले। शुरू से आप देख लें, अबू लहब पहली गुस्ताखी की, उसके बाद उतबा ने गुस्ताखी की, फिर पांच अफराद जिन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी की बैतुल्लाह में हरम में, उनको सहाबा ने कत्ल कर दिया। और एक बदबख्त ऐसा था जो काबे के पर्दे में लिपट गया, उसने सोचा कि हरम में तो कोई कत्ल कर ही नहीं सकता। अल्लाह ने फरमाया ना, वमन दखलहु कान आमिना, जो हरम में आ गया वो अमन में आ गया। और हरम में हुक्म यह है कि किसी को मारा ना जाए, किसी जानवर को तकलीफ ना दी जाए, शिकार ना किया जाए, ये सारे वहां के आदाब हैं। तो वो हरम चला गया फौरन, गुस्ताखी की नबी की शान में और हरम चला गया, अब मुझे कोई नहीं मारे, मैं महफूज हूं। और मजीद अपने आप को महफूज करने के लिए काबे के पर्दे में लिपट गया, अपने आप को छुपा लिया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निशानदेही फरमा दी, वो बदबख्त काबे के पर्दे में लिपटा हुआ है, वहीं जाकर उसे कत्ल कर दो। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन आए, उसको ढूंढा तलाश किया और काबे के पर्दे से निकाल कर उसको वहीं पर वासिले जहन्नुम कर दिया। बता दिया कि गुस्ताखे रसूल का अंजाम ही यही है कि जब वो गुस्ताखी कर दे, जमीन पर चलता हुआ ना नजर आए, उसी वक्त उसको वासिले जहन्नुम कर दिया। सहाबा का ईमान यकीन कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ अदना सी गुस्ताखी सहाबा बर्दाश्त नहीं करते, क्यों, ये ईमान का हिस्सा है, ये ईमान का हिस्सा है। और जो बर्दाश्त कर ले उसका ईमान कैसा, जो बर्दाश्त कर ले वो गुलाम कैसा, जो आका की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त कर ले वो गुलाम कैसा। पूछो सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु से, एक यहूदी और एक मुनाफिक का झगड़ा होता है, मशहूर वाक्य आप सुनते रहते। फैसला ले गए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, सरकार फैसला फरमा दीजिए। हुजूर ने फैसला यहूदी के हक में, अब वो जो मुसलमान था बल्कि हकीकत में मुनाफिक, जब बाहर निकले उसने कहा मैं इनका फैसला नहीं मानता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक कहता है मैं इनका फैसला नहीं मानता। यहूदी ने सुना, तुम अपने नबी का फैसला नहीं मानते, कहा नहीं मैं इनका फैसला नहीं मानता। फिर कहां जाएं, कहा चलो सिद्दीक अकबर के पास, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जाकर फिर मामला पेश हुआ। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना, यहूदी ने कहा एक बात सुन लीजिए, आपके पास आने से पहले आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे, फरमाया फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फैसला मेरे हक में किया, इसके खिलाफ किया। अब ये जब बाहर निकला तो ये कहता है मैं इनका फैसला नहीं मानता, और फिर ये मुझे लेकर आपकी बारगाह में आ गया। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला ने फरमाया अबू बकर का ये इख्तियार नहीं कि नबी के फैसले पर फैसला करे, जो हुजूर का फैसला वही सिद्दीक अकबर का फैसला, मैं फैसला नहीं कर सकता, जो सरकार ने फैसला कर दिया बस वही मेरा फैसला है। अब यहां से बाहर निकले, इसने कहा चलो उमर के पास, सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, और इसलिए गया کہ قرآن نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صفت بیان کی، اشداہ علی الکفار، کہ یہ کافروں پر بہت سخت ہیں، اور ان کی سختی مشہور تھی، ذرا کسی سے غلطی ہو جائے تو کوئی رعایت نہیں ہے، اسی وقت سزا، اسی وقت کسی سے کوئی رعایت نہیں، شریعت کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں، عدل اور انصاف۔ تو دل میں اس نے یہ سوچا ہوگا کہ فاروق اعظم کافروں پر بہت سخت ہیں، اور یہ ہے یہودی، میں ہوں مسلمان، جب یہ فیصلہ ہوگا تو ظاہر ہے فاروق اعظم میرے حق میں کر دیں گے۔ گئے وہاں پر، آپ نے پوچھا کیا ہوا، کہا یہ معاملہ ہے۔ یہودی نے اسی وقت کہا، جناب ایک بات سن لیجئے، ہم یہاں آنے سے پہلے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فیصلہ میرے حق میں اور اس کے خلاف کیا، لیکن جب وہاں سے باہر نکلے تو اس نے یہ کہا کہ میں ان کا فیصلہ نہیں مانتا۔ حضور علیہ السلام، فاروق اعظم سن رہے ہیں، اچھا پھر کیا ہو؟ پھر اس نے کہا چلو صدیق اکبر کے پاس۔ فرمایا انہوں نے کیا کیا؟ کہا انہوں نے فرمایا کہ حضور کے فیصلے پر میں فیصلہ نہیں کر سکتا، جو رسول کا فیصلہ وہی ابو بکر صدیق۔ اب یہ مجھے لے کر آپ کے پاس آیا کہ آپ فیصلہ کر دیں۔ فاروق اعظم نے کہا اس کا فیصلہ تو میں کروں گا، میں کروں گا اس کا فیصلہ۔ وہ بڑا خوش ہوا ہوگا کہ میرے حق میں فیصلہ ہوگا۔ فرمایا بیٹھو بیٹھو، ابھی میں آ کے فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ گھر میں تشریف لے گئے، اپنی تلوار لے کر آئے، اور یہ کہتے ہوئے اس منافق کی گردن کو اڑا دیا، جو رسول کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی، جو حضور کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ سر اڑا دیا، ختم کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ مدینے میں شور مچ گیا، عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا، عمر نے کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا، عمر نے نماز پڑھنے والے کو قتل کر دیا، بے گناہ مسلمان کو قتل کر دیا، شور ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک بات پہنچی، فرمایا عمر کو بلاؤ۔ بلایا، حاضر ہوئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار پوچھتے، عمر تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، یا رسول اللہ وہ مسلمان تھا کب؟ وہ مسلمان تھا کب؟ حضور جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی فاروق اعظم نے اپنی رائے دی، اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا اور فاروق اعظم کی رائے کی تصدیق کر دی۔ اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، اے محبوب یہ ہرگز مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، حتی یحکموا فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اگر آپ کو ان پر حکم بنا دیا جائے اور آپ فیصلہ کر دیں اور یہ اپنے دل میں آپ کے فیصلے کے خلاف تنگی محسوس کریں، محبوب ہرگز یہ مسلمان نہیں، فلا وربک لا یؤمنون، یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ تو صحابہ کا ایمان یہ تھا، یقین کامل یہ تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یہ تھی کہ ادنا سی گستاخی بھی حضور کی شان میں برداشت نہیں کرتے۔ ادنا سی گستاخی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں برداشت نہیں کرتے تھے، اور اسی وقت واصل جہنم کر دیا اور بتا دیا، ایک قانون بنا دیا اور بتا دیا کہ گستاخ رسول کی سزا موت کے سوا اور کوئی نہیں۔ اگر گستاخوں کو چھوڑ دیا جائے تو پھر تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور کوئی گستاخی کرتا رہے گا، اس لیے سزا ہی ایسی رکھی ہے کہ تاکہ آگے لوگوں کو تنبیہ ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں، ایک آدمی دوسرے کا ادب کرتا، احترام کرتا، چاہے ان میں ظاہری کوئی رشتہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک شاگرد ہے، اس پر لازم ہے کہ استاد کا احترام کرے، ٹھیک ہے نا، مرید پر لازم ہے کہ پیر کا احترام کرے، چھوٹے پر لازم ہے کہ بڑے کا احترام کرے، جوان پر لازم ہے کہ بوڑھے کا احترام کرے, اور یہ ہر مذہب میں ہر جگہ یہ ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک دفتر میں ایک افسر آتا ہے تو جتنے ماتحت ہیں سب کے سب کھڑے ہو جاتے, کھڑے ہو جاتے ہیں نا, اور اگر نہ کھڑے ہوں تو کہیں گے دیکھو کتنے بے ادب ہیں, ان کے پاس مینر نہیں ہے, تہذیب نہیں, تمدن نہیں, ایک بڑا افسر آ گیا یہ بیٹھے ہیں آرام سے. بیٹے پر لازم ہے کہ باپ کا احترام کرے, شاگرد پر لازم ہے کہ استاد کا احترام کرے, جوان پر لازم ہے کہ بوڑھوں کا احترام کرے. سرکار تو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من لم یرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا فلیس منا, جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے, فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ہر چھوٹے پر لازم ہے کہ بڑے کا احترام کرے. اب یہ سلسلہ آگے چلے گا, ولی پر لازم ہے نبی کا احترام کرے, نبی پر لازم ہے رسول کا احترام کرے, رسول پر لازم ہے اولو العزم رسول کا احترام کرے, اولو العزم رسول پر لازم ہے سید الانبیاء کا احترام. ہم بڑوں کا احترام کرتے ہیں, اور جو کائنات میں سب سے بڑا ہو, جو سارے رسولوں سے بڑا ہو, جو سارے نبیوں سے بڑا ہو, جو رسولوں کا سردار ہو, جو نبیوں کا سردار ہو, جس کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی ہو, اگر اس کا احترام نہ کیا جائے تو پھر کس کا احترام کیا جائے؟ افسوس ہے ان بدبختوں پر جو مختلف ادوار میں کچھ عرصے کے بعد کبھی خاکے بنا رہے ہیں, کبھی قرآن کو جلا رہے ہیں, کبھی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں, حالانکہ ان کے نبی ہمارے نبی کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں, بشارت دے رہے ہیں, اور ہمارا قرآن ان کے نبیوں کی شان بیان کر رہا ہے, اور وہ بدبخت ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. یہ سوائے پاگل پن کے اور کچھ نہیں ہے. کیوں؟ آپ دیکھیں مسلمانوں نے ہر دور میں علم سے جواب دیا ہے, تحریر سے جواب دیا ہے, تقریر سے جواب دیا. جس کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں تحریری طور پر گستاخی کی, کوئی کتاب لکھی, الزامات لگائے, اس دور کے علماء نے, مشائخ نے کتابیں لکھ کر ان کے تمام اعتراضات کے جوابات دے دی. تحریری طور پر یہ مقابلہ نہیں کر سکتے, علمی طور پر یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی چیز اتھینٹک نہیں ہے, ان کے پاس کوئی چیز اتھینٹک نہیں. کیسے؟ ان کے نبی کی سیرت محفوظ نہیں. آپ دیکھ لیں, کسی عیسائی سے پوچھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح چلتے تھے, کس طرح اٹھتے تھے, کس طرح بیٹھتے تھے, کیسے کھاتے تھے, کیسے سوتے تھے, سوائے چند باتوں کے کچھ نہیں بتا سکتے, کچھ نہیں بتا سکتے. ان کے نبی کی سیرت محفوظ نہیں. جبکہ ہم مسلمان ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وصال تک ایک ایک لمحہ محفوظ, ایک ایک لمحہ محفوظ ہے. کس طرح چلتے تھے؟ کوئی پوچھے آپ بتا سکتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ جب چلتے تھے تو آہستہ آہستہ قدم رکھتے تھے, اور اس طرح قدم رکھتے تھے جیسے بلندی سے پستی کی طرف آ رہے, جیسے کوئی اوپر سے نیچے کی طرف اترتا ہے نا, تو آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہے کہ میں کہیں گر نہ جاؤں, قدم کو جمع جمع کر رکھتا ہے. اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آہستہ آہستہ قدم مبارک رکھتے تھے جیسے بلندی سے پستی کی طرف نیچے کی طرف اتر رہے ہیں. کھاتے کس طرح تھے, پیتے کس طرح تھے, اطمینان کے ساتھ ایک ایک لقمہ. پانی کیسے پیتے تھے؟ تین مرتبہ, ایک مرتبہ پیا, پھر ایک مرتبہ, دوسری مرتبہ, پھر تیسری مرتبہ. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ گلاس منہ سے لگایا تو پورے ہی ختم کر کے ہٹا, نہیں. کھانے کے آداب, پینے کے آداب, چلنے کے آداب, بیٹھتے کس طرح تھے. ارے میرے رسول کی شان یہ تھی, کیسے سے کیسا ہی آدمی بیٹھا ہو اور کیسے سے کیسا قداور آدمی ہو اور حضور کے ساتھ چل رہا ہو, کتنا ہی لمبا آدمی ہو, جب سرکار کے ساتھ چلتا تھا حضور سب سے بلند نظر آتے, کیسے ہی مجمع میں بیٹھے ہوں سب سے بلند نظر آتے تھے. جس کو خدا نے بلند کیا ہو وہ بلند نہیں ہو تو اور کون بلند ہو؟ تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے ایک ایک لمحے کو بیان کر سکتے ہیں، بلکہ ایک اور بات بتاؤں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، دنیا میں کوئی ایسا انسان آج تک پیدا ہی نہیں ہوا جس کی مسکراہٹوں کو بھی جمع کیا گیا، جس کی مسکراہٹوں کو بھی جمع کیا گیا ہو. میرے آقا کی شان یہ ہے، کتاب ہی اس پر لکھی گئی، پیارے نبی کی مسکراہٹیں. کون کون سے مقام پر حضور مسکرائے تھے، ان سب کو جمع کر کے عاشقوں نے کتاب بھی چھاپ دی. میرے رسول کی تو مسکراہٹیں بھی محفوظ ہیں، کتنی جنگوں میں حصہ لیا وہ بھی محفوظ ہے، بچپن بھی محفوظ ہے، جوانی بھی محفوظ ہے، وصال تک ایک ایک لمحہ محفوظ ہے. یہ شان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہ اعزاز ہم غلاموں کو حاصل. عیسائیوں سے پوچھو، سوائے چند باتوں کے کچھ نہیں بتا سکتے. یہودیوں سے پوچھو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، چند باتوں کے کچھ نہیں بتا سکتے. ان کے نبی کی سیرت محفوظ نہیں، دوسرے ان کی مذہبی کتاب محفوظ نہیں. کتنی تعریف ہو چکی، ہم گزشتہ نشستوں میں آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن ہمارا قرآن جیسے روز اول میں نازل ہوا، الحمدللہ آج بعین ہی اسی طرح موجود ہے، انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے. مذہبی کتاب ہماری محفوظ، ہمارے نبی کی سیرت محفوظ، اور تیسری چیز نبی کے اقوال اور احادیث محفوظ. پوچھ لو عیسائیوں اور یہودیوں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارشادات کتنے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات کتنے ہیں، سوائے چند کے کچھ نہیں بتا سکتے. لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث محفوظ، اور بلکہ یہ نہیں، ان حدیثوں کو پرکھنے کے لیے فن اسماء الرجال کو وضع کیا گیا. راوی کیسا ہے، اگر یہ روایت کر رہا ہے تو یہ حضور کے زمانے میں تھا بھی یا نہیں تھا، یا اس نے جس سے سنا ہے وہ حضور کے زمانے میں تھا یا نہیں تھا، یا جو روایت کر رہا ہے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کی حیثیت کیسی ہے. ایک ایک چیز کو علماء نے بیان کیا ہے اور فن اسماء الرجال کو وضع کر دی. حدیثوں کے لیے ایک فن کو باقاعدہ مرتب کیا گیا، مدون کیا گیا. اس لیے الحمدللہ ہمارے پاس ہماری نبی کی سیرت محفوظ، ان کی احادیث محفوظ، ہمارا قرآن محفوظ، اور ان کے پاس نہ نبی کی سیرت محفوظ، نہ ان کی مذہبی کتاب محفوظ، نہ ان کے اقوال و احادیث محفوظ. اس لیے یہ لوگ احساس کمتری میں ہیں. علمی طور پر کبھی بھی یہ یہود و نصارہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہر دور میں مسلمانوں نے ان کو شکست دی ہے، علمی طور پر، تحریری طور پر، تقریری طور پر. اور جب ان کے پاس کچھ نہیں تو پھر ان کو کچھ نظر نہیں آتا تو خاکے بنا کر مذاق اڑاتے ہیں یا قرآن کو جلاتے ہیں. ہم کہتے ہیں آؤ علمی میدان میں آ کر مقابلہ کرو، پھر ہم تمہیں بتائیں کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے. یہ تو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں کہ قرآن کو، یعنی ایک کامن سینس کی بات ہے، کسی کے عقل میں آتی ہے کہ قرآن پر مقدمہ چلا، قرآن پر مقدمہ چلا اور اس کو سزا دی گئی عدالت سے، قرآن کو معاذ اللہ، اور سزا کیا کہ اس کو جلا دیا جائے، اس کو جلا دیا، اپنے دل کو ٹھنڈا کر لیا. کیا تم نے قرآن کا ایک نسخہ جلا دیا تو پوری دنیا کے نسخے ختم ہو گئے؟ نہیں، قرآن محفوظ ہے اس لیے کہ اس کی حفاظت خالق کائنات فرما رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے. ارے قرآن نے جو دعویٰ کیا تھا اس دعوے کو تو پورا کر دو. قرآن نے جو چیلنج کیا تھا، فاتو بسورت من مثلی، اس کی مثل ایک سورت لے آؤ، اس چیلنج کا تو جواب نہیں دے سکے آج تک، اور نہ قیامت تک دے سکیں گے. جب علمی طور پر مقابلہ نہ کر سکے تو پھر کیا کیا، اس کو اٹھا کر جلا دیا. یہ تو ایک پاگل پن کی دلیل ہے، یہ تو مینٹل کیس ہے، یہ تو مینٹل کیس ہے. ارے یہ اپنی مذہبی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں تو ہمارے نبی کی شان ان پر ظاہر ہو جائے. کوئی نبی ایسا نہیں جس نے میرے رسول کا ذکر نہ کیا ہو. آسمان سے اترنے والا کوئی صحیفہ، کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں میرے رسول کی عظمت اور شان کو بیان نہ کیا گیا ہو. اگر یہ یہود و نصارہ صحیح طور پر اپنی کتابیں پڑھنے تو رسول کی شان میں کبھی گستاخی نہ کریں. لیکن افسوس کہ یہ لوگ اس طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں और अपना ठिकाना जहन्नुम में बनाते। गुस्ताखे रसूल की सजा सिवाय मौत के और कोई नहीं। जिसके दिल में भी जरा सी गैरत ईमानी है, वो कभी अपने आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अदना सी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर दौर में जब भी तहरीरी तौर पर या तकरीरी तौर पर गुस्ताखी की गई, उलमा ने तहरीरी तौर पर जवाब दिया, मुनाजरे किए, और आशिकान रसूल ने गुस्ताखान रसूल को वासिले जहन्नम कर दिया और खुद जन्नतुल फिरदौस में पहुंच गए। वाकया तो बेशुमार हैं, मैं सिर्फ चंद वाकया सुनाकर फिर अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। गाजी आलमदीन शहीद, एक बदबख्त ने किताब लिखी और उसका नाम टाइटल या उनवान कहें रखा रंगीला रसूल, माजल्ला सुम्मा माजल्ला, हुजूर अलैहि सलातो वसलाम की शान में गुस्ताखी। और लाहौर के एक बदबख्त इंसान जिसका नाम राजपाल था, उसने इस किताब को छाप कर तकसीम करने का बेड़ा उठाया, मैं छाप कर तकसीम करूं। तकसीम की गई, मुसलमानों में गुस्से की लहर दौड़ गई, गैरत ईमानी बेदार हो गई, मुसलमान सरापा एहतजाज बन गए। गाजी आलमदीन शहीद सो रहे हैं, ख्वाब में देखा कि एक बुजुर्ग आते हैं और कहते आलमदीन तुम सो रहे हो, लोग तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और तुम सो रहे हो। ख्वाब देखते ही बेदार हुए। इनका एक दोस्त था जिसका नाम था रशीद और उसको शीदा शीदा कहते थे। उसके पास गए, उसको बताया, उसने कहा कि हाँ ये बदबख्त तो यहीं मौजूद है, किताब को छाप रहा है, तकसीम कर रहा है यहीं लाहौर में, मैं इसको मारूंगा। गाजी आलमदीन ने कहा नहीं तुम नहीं, मैं मारूंगा। अब दोनों में इसी बात पर, कहा भाई ख्वाब मैंने देखा है, हुक्म मुझे हुआ है। उसने कहा नहीं ये तो सआदत है गुस्ताखे रसूल को मारना, मैं तो हुजूर की बारगाह में अपना ये गुनाहगार चेहरा दिखाने के काबिल हो जाऊंगा कि सरकार आपके गुस्ताख को मार के आया हूं। इन्होंने कहा नहीं मैं मारूंगा। उसने कहा मैं अच्छा चलो कुरा डालो, कुरानदाजी कर लो, जिसके नाम का निकल आए वो ही मार दे। कुरानदाजी की तो कुरान निकला गाजी आलमदीन के नाम, सरकार ने उनको पसंद कर लिया हो। बहरहाल इन्होंने एक खंजर लिया। अच्छा उसको भी पता था कि मुसलमान गैज़ो गज़ब में गुस्से में, तो वो पुलिस की सिक्योरिटी में घूमता था। पाकिस्तान बनने से पहले का वाकया था, वो दिल्ली चला गया। अब ये इंतज़ार करते रहे कब ये वापस आता है और कब हम इसको वासिले जहन्नम करें। 6 सितंबर 1929 को राजपाल जो था बदबख्त वो लाहौर पहुंचा। इनको पता चल गया, इन्होंने एक खंजर लिया, उसको छुपाया और खामोशी से वो आया, अपनी दुकान में दाखिल हुआ। गाजी आलमदीन शहीद उसी वक्त दाखिल हुए और जाकर उसका काम तमाम कर दिया। और उसके बाद वहां से भागे नहीं, वहीं खड़े रहे। वो खून आलूदा चाकू या छुरी जो भी थी, जो हथियार था वो लेकर, इतने में उधम मच गई, पुलिस पहुंच गई, कहा मुझे गिरफ्तार कर लो, तुमने क्यों ऐसा किया। बिल्कुल मैंने किया है, मैं बबांगे दोहल कहता हूं, मैंने डर के ये काम नहीं किया है, मैं भागा भी इसलिए नहीं, इसने मेरे आका की शान में गुस्ताखी की और उस गुस्ताखाना किताब को छाप कर इसने फरोख किया है, इस वजह से मैंने इसको मारा, गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा हो गया, मुसलमान सरापा एहतजाज, और उसके बाद मुजाहरे होते रहे। अंग्रेजों ने अपनी बदनीयती को जाहिर किया और उन्होंने कहा नहीं इसको सजाए मौत होगी, और गाजी आलमदीन शहीद को सजाए मौत सुना दी गई। मुसलमान एहतजाज करते रहे लेकिन उन्होंने गाजी आलमदीन शहीद को फांसी दी और लाश मुसलमानों के हवाले नहीं की, जेल में ही दफन कर दी। अल्लामा इकबाल ने कायदे आजम से अपील की कि आप इसका मुकदमा लड़ें, اور یہ دونوں حضرات آئے, انہوں نے مقدمہ لڑا. پہلے وہ لاش دینے کے حق میں نہیں تھے, لیکن ان دونوں نے جب مقدمہ لڑا اور کہا کہ نہیں لاش ہمیں چاہیے, اس لیے کہ انگریز حکومت کو یہ خطرہ تھا کہ جب لاش دی جائے گی تو یہ جنازے کا جلوس نکالیں گے اور زیادہ ادھم مچے گی, ایسا نہیں کہ حکومت کے خلاف اور زیادہ کچھ مسئلہ ہو جائے, امن و امان کا مسئلہ ہو جائے. لیکن قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے مقدمہ لڑا. دفن کے 14 دن کے بعد, اب کسی کو دفن کیا جائے تو 3 دن کے اندر پیٹ پھٹ جاتا, اور ٹائم گزرے تو پھر کیڑے پڑ جاتے ہیں, جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے, کسی کے جسم سے بدبو آتی ہے, کچھ ہوتا ہے, مختلف چیزیں ہیں. لیکن وہ غازی اور وہ شہید جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر قربان ہوا تھا, جس نے سرکار کے گستاخ کو واصل جہنم کیا تھا, 14 دن اس کا جسم قبر میں رہا. علامہ اقبال اور قائد اعظم کے مقدمہ لڑنے کی وجہ سے انگریز جج نے فیصلہ دیا کہ جسم کو نکال کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے. 14 دن کے بعد جب جسم کو نکالا تو کفن بھی میلا نہیں ہوا, کفن بھی میلا نہیں تھا, جسم بھی صحیح تھا, کفن بھی صحیح تھا. عاشقوں کا کفن میلا نہیں ہوتا, نہ جسم گلتا ہے, زمین تو خود حفاظت کرتی ہے. یہ تو رسول کا عاشق آ رہا, یہ تو رسول سے محبت کرنے والا آ رہا ہے. اس کے بعد ان کو جب جنازہ ہوا, کیونکہ انہوں نے بغیر جنازہ پڑھائے دفن کر دیا تھا, جب نکلا مسلمانوں کے پاس وہ جنازہ آیا اور ان کی نماز جنازہ ہوئی, علامہ اقبال, قائد اعظم اور دیگر علماء, اور سب سے بڑھ کر جو ایک سننے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ علامہ ابوالحسنات, جن کا مزار مبارک لاہور میں مسجد وزیر خان کے جو خطیب تھے, ان کے والد محدث الوری مولانا دیدار علی شاہ, محدث الوری جو 40 سال سے حدیث پڑھا رہے تھے, وہ ان کے جنازے میں شریک تھے. دیکھنے والوں نے دیکھا محدث الوری رو رہے ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں 40 سال سے حدیث پڑھا رہا ہوں, دیدار علی شاہ 40 سال سے حدیث پڑھا رہا ہے, آج تک مجھے زیارت نہیں ہوئی, سرکار آپ نے کرم فرمایا اس نوجوان کے جنازے میں تشریف لے آئے. انہوں نے حضور کی زیارت کی اور روتے ہوئے یہ کہا 40 سال سے میں نے حدیث پڑھائی ہے, مجھے آج تک زیارت نہیں ہوئی, اور سرکار نے یہ کرم فرمایا اس نوجوان کے جنازے میں حضور تشریف لیا. علامہ اقبال نے کہا ہم تو باتیں کرتے رہ گئے, یہ منڈا تو ہم سے بازی لے گیا, اس نے تو ایک چھلانگ ادھر لگائی اور دوسری جنت میں, یہ تو ہم سے بازی لے گیا. یہ ہے عاشقان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام, بلکہ انجام نہیں بلکہ یہ ان کی شان اور ان کا نتیجہ جو کچھ انہوں نے حضور کے عشق اور محبت میں کیا. جب بھی, جس وقت بھی, جس موقع پر جس بدبخت نے گستاخی کی اس کے ساتھ یہی حشر ہوا. ایک بدبخت سلمان رشدی اور دوسری بدبخت عورت تسلیمہ نسرین, جس کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے, یہ دونوں زندہ ہیں اور لندن میں موجود ہیں, لیکن اس گستاخی کے بعد ان کی زندگی اجیرن ہے. وہ سلمان رشدی بدبخت سیکیورٹی کے بغیر نکل نہیں سکتا. ایک دن جھنجھلا کے اخبار میں بیان دیتا ہے, کیا مصیبت ہے کہ میں نہ بازاروں میں گھوم سکتا ہوں, نہ میں سیر و تفریح کے لیے جا سکتا ہوں, میں تو گھر میں بند ہو کر رہ گیا. کہنے والے نے کہا ابھی تو تو جہنم میں بند ہوگا تو پتہ چلے. دنیا میں ہی زمین تنگ ہو گئی, جو رسول کی شان میں گستاخی کرے نہ زمین قبول کرتی ہے نہ انشاءاللہ جنت اسے قبول کرے گی, ہاں جہنم ہی اسے ضرور قبول کرے. اس کے بعد اور بھی بہت سے بدبختوں نے کی, اور چند سال قبل آسیہ کے نام سے ایک بدبخت عورت نے گستاخی کی, لیکن افسوس کہ ابھی تک, حالانکہ پاکستان کے آئین میں یہ بات شامل ہے کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے, سزائے موت ہے, لیکن افسوس کہ یہ شامل ہونے کے باوجود آج تک کسی کو سزائے موت نہیں دی گئی, کسی کو نہیں دی گئی. قانون پر عمل ہونا چاہیے. ایک گورنر, ان کو بڑے رحم آیا اس लड़की पर कि इसके साथ ये ज्यादती हो रही है, क्यों रहम आया, अगर जरा भी ईमान होता, गैरत ईमानी होती तो कभी ये हरकत ना करती। इस कानून को काला कानून करार दिया और उसकी मदद करने के लिए पहुंचे, उससे दरखास्तें लिखवा रहे हैं, उसकी हिमायत कर रहे हैं, बिलाखिर एक और गाजी पैदा हो गया, गाजी मुमताज कादरी, और उसने गैरत ईमानी का मुजाहिरा करते हुए उस बदबख्त को वासिल जहन्नम कर दिया, इसलिए कि जो गुस्ताख रसूल की मावनत करे वो भी उसी में एक साथ क्या मिले। कैसे मावनत कर दी? आपके दिल में मोहब्बत रसूल नहीं है, गैरत रसूल नहीं है, एक ईसाई औरत की हिमायत कर रहे हैं गवर्नर होकर, ये कैसा ईमान है, ये कैसी मोहब्बत है, कैसे उम्मती हैं अपने नबी की। जरा भी ईमानी गैरत होती तो कभी ऐसा नहीं करती। लेकिन अफसोस के आज भी उस गाजी की सजा को फिर दोबारा बहाल किया गया, सजाए मौत को फिर दोबारा बहाल किया गया। हम यही मुतालबा करते हैं, तमाम उलमाए अहले सुन्नत ये मुतालबा कर चुके हैं, करते हैं और कर रहे हैं कि उसको फिलफौर आजाद किया जाए, इसलिए कि वो गाजी है, उसने अपनी गैरत ईमानी का मुजाहरा करते हुए एक गुस्ताख को वासिले जहन्नम किया। लेकिन अफसोस है कि मगरबी तहजीब या दूसरे आकाओं के इशारों पर यह किया जा रहा है। अल्लाह तबारक व ताला हमारे अंदर गैरत ईमानी को बाकी रखे और अपने रसूल से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, इसी मोहब्बत में जिंदा रहें और इसी मोहब्बत में मौत अता फरमाए। ये माल, ये दौलत, ये ओहदा, ये मनसब, ये इख्तियार, ये इख्तदार, ये हुकूमत, ये सारी चीजें, ये सब फना होने वाली हैं, आखिरत की जिंदगी बाकी रहने वाली है। अगर किसी की नजर आखिरत पर हो और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत उसके दिल में हो, कभी भी वो इस सजा को दोबारा बरकरार नहीं रख सकता, फिलफौर गाजी को आजाद कर दे। हमारी दुआएं उस गाजी के साथ हैं और इंशाअल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम की निगाह करम भी उस पर होगी और इंशाअल्लाह वो आज़ाद होगा। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फरकान हमीद में जा बजा अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदब करने का तरीका बताया, समझाया, और सहाबा ने उस पर अमल किया, और जिसने अमल नहीं किया और गुस्ताखी की, सहाबा ने उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी और बता दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने जिस मुसलमान को कत्ल किया, नमाज पढ़ता था, रोजे रखता था, हुजूर की बारगाह में हाजिर होता था, लेकिन जब उसने ये कहा मैं इनका फैसला नहीं मानता, फारूक आजम ने कहा जो रसूल का फैसला ना माने उसका फैसला उमर की तलवार करेगी। हमारे पास एक नमूना मौजूद है और न सिर्फ फारूक आजम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत रब्बानी नाजिल फरमा दी और उनके इस अमल की ताईद फरमा दी। फला वरब्बिका ला युमिनून, ऐ महबूब आपके रब की कसम वो मोमिन नहीं, मोमिन हो ही नहीं सकते। हत्ता युहक्किमू कफीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदु फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कदैता वयुसल्लिमू तस्लीमा। आपके फैसले के खिलाफ अपने दिल में तंगी महसूस करें, हरगिज मोमिन नहीं हो सकते। जो रसूल का वफादार है, जो रसूल का वफादार है वही जन्नत का हकदार है, और जो गद्दार है वो जहन्नम का हकदार है। बस यही फैसला है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने हबीब पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत में जिंदा रखे और हुजूर की सच्ची मोहब्बत में मौत अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।